पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। हे भाइयों बहनों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सुसंदेश सुनाया, तुमने उसे अपना लिया और उसमें बने भी हो। यदि इस संदेश पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो यही तुम्हें मुक्ति देता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार ठहरा। जो बात मुझ तक पहुंची थी, मैंने उसे सबसे जरूरी जानकर तुम तक पहुंचाई। वो यह कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठे। वह कैफा को और फिर बारहों को दिखाई दिए। उसके बाद वह 500 से ज्यादा भाइयों बहनों को एक ही समय में दिखे, जिनमें से अधिकतर लोग अभी जीवित हैं, हालांकि कुछ मर चुके हैं। तब वह याकूब को दिखाई दिए और फिर सब प्रेरितों को। सबसे आखिर में उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जो मानो समय से पहले पैदा हुआ हो। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, इसलिए कि मैंने परमेश्वर के चर्च को पीड़ा दी थी। लेकिन परमेश्वर के अपार कृपा से मैं अब जो हूं सो हूं। मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह बेकार नहीं रहा, लेकिन मैंने उन सब की तुलना में सबसे अधिक प्रचार किया। इसमें भी मेरा कुछ नहीं, यह उनकी कृपा का परिणाम था। इसलिए चाहे मैं या वे, हम यही आनंद का संदेश देते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। अब यदि मसीह के बारे में यह संदेश सुनाया जाता है कि वह मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, तो फिर तुम में से कुछ मरे हुओं के जिलाए जाने का इनकार क्यों करते हैं? यदि मरे हुओं का जिलाया जाना है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जिलाए गए। यदि मसीह जिलाए नहीं गए, तो हमारा सुसंदेश देना और तुम्हारा उस पर विश्वास लाना दोनों ही बेकार है। यही नहीं, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के बारे में गवाही दी कि उन्होंने यीशु को जिलाया। लेकिन यदि मरे लोग जिलाए नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर ने मसीह यीशु को भी नहीं जिलाया होता, क्योंकि यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो मसीह भी जिलाए नहीं गए। यदि मसीह को जिलाया नहीं गया, तो तुम्हारा विश्वास लाना बेकार है और तुम अभी तक अपने गुनाहों के कारण सजा के अधीन हो। इसके अलावा मसीह पर विश्वास लाने के बाद जो लोग मरे, वे भी नाश हो गए। इसलिए यदि मसीह पर हमारी आशा केवल इस जीवन के लिए ही है, तो दुनिया में हम लोग सचमुच सबसे अधिक दुखी लोग होंगे। लेकिन मसीह सचमुच मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वह पहले फल हैं। इसलिए कि जब एक इंसान के द्वारा मौत आई, इसलिए मरे हुओं का जी उठना भी एक इंसान से ही हुआ। जिस तरह से हर इंसान मरता है, क्योंकि हम सभी आदम से हैं, हर वह इंसान जो मसीह का है उसे जिला दिया जाएगा। लेकिन जिलाए जाने में भी क्रम है। फसल के पहले हिस्से की तरह मसीह का जी उठना था। मसीह के आने पर वे भी जी उठेंगे जो उनके हैं। उसके बाद अंत आ जाएगा। उस समय वह सारे शासन, अधिकार और सामर्थ को समाप्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के सुपुर्द कर देंगे। जब तक मसीह अपने सारे दुश्मनों को अपने पैरों तले न ले आए, उनका राज्य करना जरूरी है। सबसे आखिरी दुश्मन जिसका अंत किया जाएगा, वो मौत है, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। इसलिए जबकि लिखा है सब कुछ उनके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि इसमें वह नहीं है जिन्होंने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया। जब सब कुछ उनके अधीन हो जाएगा जिन्होंने सब कुछ उनके अधीन कर दिया, ताकि सब जगह सब बातों में परमेश्वर ही सब कुछ हो, तब पुत्र भी खुद उनके अधीन हो जाएगा। नहीं तो जो लोग मर चुके लोगों के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उनका क्या? यदि मरे हुओं का जी उठना नहीं है, तो फिर उनके लिए बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? हर दिन हम क्यों जोखिम का सामना करते हैं? हे भाइयों बहनों, मेरे उस घमंड की वजह से जो मसीह यीशु में हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, मैं यह पुख्ता तरीके से कहता हूं कि मौत हर रोज मेरे सामने खड़ी रहती है। यदि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं तो इफिसुस में जंगली जानवरों से संघर्ष करने से क्या लाभ था, और ये भी कि आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखे में मत रहो, बुरी संगति अच्छे चालचलन को बिगाड़ देती है। भलाई और भक्ति के लिए जाग उठो, अपने पाप में जीना बंद करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, यह मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूँ। कोई कह सकता है, मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, किस तरह की देह के साथ हुए जी उठेंगे? क्या मूर्खता का सवाल है। जब तुम एक बीज जमीन में बोते हो, जब तक वह मरता नहीं उसमें से पौधा नहीं निकलता, और जो तुम बोते हो यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, लेकिन सिर्फ दाना ही है, चाहे वह किसी भी अनाज का दाना हो। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देते हैं। हर एक बीज के पास उसकी अलग किस्म की देह होती है। सभी देह एक सी नहीं है, लेकिन मनुष्यों की देह, पशुओं की देह, पक्षियों की देह और मछलियों की देह, सभी में अंतर है। स्वर्गिक देह है और पार्थिव भी, लेकिन स्वर्गिक देहों के तेज और पार्थिव देहों के तेज में अंतर है। सूर्य, चंद्रमा और तारों का तेज एक सा नहीं है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में फर्क है। मरे हुओं का जी उठना भी ऐसा ही है। देह नाशमान स्थिति में बोई जाती है और अविनाशी स्थिति में जी उठती है। बेइज्जती के साथ देह बोई जाती है और तेज के साथ जी उठती है। कमजोरी के साथ बोई जाती है और शक्ति के साथ जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, लेकिन आत्मिक देह जी उठती है। इसलिए कि स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है कि पहला इंसान अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और आखिरी आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। पहले स्वाभाविक था, आत्मिक नहीं था, बाद में आत्मिक हुआ। पहला इंसान धरती अर्थात मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गिक है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही दूसरे मिट्टी के हैं, जैसा वह स्वर्गिक है वैसे ही और भी स्वर्गिक हैं। जैसे हमने उसका रूप पाया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी पाएंगे। हे भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूं कि मांस और खून परमेश्वर के राज के हकदार नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे रहस्य की बात कह रहा हूं कि हम सभी सोएंगे नहीं, लेकिन सभी बदल जाएंगे, और यह पल भर में पलक मारते ही आखिरी तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि इस नाशमान को अविनाशी और मरणशील को अमरता को पहनना जरूरी है, लेकिन जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तब यह लिखित वचन पूरा हो जाएगा,
मौत को विजय ने निगल लिया है।
हे मौत,
तुम्हारी जीत कहाँ है? हे मौत, तुम्हारा डंक कहाँ?
मौत का डंक तो पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मजबूत बने रहो और यीशु के काम में हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी मेहनत प्रभु में बेकार नहीं है।